भाग छः, नारीवाद, लिंग और शक्ति, नारीवाद तथा पितृतंत्र, निजी व्यक्तित्व और सार्वजनिक अव्यक्तित्व मुद्दों से जुड़ी बहस ने पिछली 3 दशकों में नारीवाद आंदोलन को जन्म दिया है। पितृतंत्र के विपरीत नारीवाद समाज और राज्य में नारियों के अधिकारों और स्थिति से जुड़ा है। यह नारियों को समाज में उनका उचित स्थान दिलाने का आंदोलन है। लिंग भेद क्या है? प्राणी शास्त्र में जिसे यौन या सेक्स कहा जाता है, वही सामाजिक विज्ञानों में लिंग कहलाता है। इस रूप में लिंग यौन असमानताओं का सामाजिक संस्थाकरण है। यह एक प्रकार से स्त्री या पुरुष होने का कारण सामाजिक संस्थाओं में विषमता का परिचायक है। यह वह अवधारणा है जो समाज में पुरुषों और स्त्रियों को अलग अलग भूमिकाएं तथा उनसे जुड़े हुए तत्व का निर्धारण करती है। यह समाज में स्त्रियों और पुरुषों की हैसियत का निर्धारण करने वाली अवधारणा है। यह जीव शास्त्रीय अंतरों को समाजशास्त्रीय स्वीकृति देने का प्रयास है। पितृतंत्रात्मक समाज में लिंग भेद की अवधारणा नारियों को पुरुष से हीन स्थान देने की विचारधारा भी है। इस अवधारणा के विभिन्न आयाम इस प्रकार हैं। पहला, लिंग जीवशास्त्री नहीं बल्कि सामाजिक अवधारणा है। दूसरा, इसमें स्त्री पुरुष दोनों की प्रजातियां सम्मिलित हैं। तीसरा, लिंग सामाजिक होने के नाते यह जनता को पुरुष और नारी के रूप में अलग अलग वर्गों में तथा समाज में उनकी भूमिकाएं निर्देशित करता है। पितृतंत्र में लिंग से हमारा अर्थ नारियों की शोषित अवस्था से है। लिंग और यौन में अंतर। लिंग और यौन एक दूसरे से बहुत भिन्न हैं, किंतु इन्हें अक्सर एक मान लिया जाता है। इनकी भिन्नता के कारण अनेक समस्याएं पैदा होती हैं, जिनकी ओर नारीवाद आंदोलन ने ध्यान आकर्षित किया है। पहला, लिंग समाज में व्यक्तियों को यौन के आधार पर वर्गीकृत करने का माध्यम है, जबकि यौन जनता को शरीर के आधार पर विभाजित करता है। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि लिंग सामाजिक तथा सेक्स जीवशास्त्रीय वर्गीकरण का आधार है। दूसरा, लिंग चेतना पर आधारित है, जबकि यौन जन्म पर। जन्म से कोई लड़का या लड़की हो सकता है, किंतु समाज में निर्धारक भूमिकाएं के अनुसार वह पुरुष या नारी के रूप में विकसित हो जाते हैं। लिंग यौन का व्यवहारिक रूप है, जो यौन लिंग का जीव शास्त्रीय आयाम। तीसरा, किंतु पुरुषत्व तथा नारीतत्व की लिंग संबंधी विशेषताएं सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश से जुड़ी हैं। चौथा, लिंग भेद परवरिश पर आधारित है, जबकि किसी का स्त्री या पुरुष होना सहज प्राकृतिक विधान है। परवरिश से पुरुष और स्त्री को उनकी कर्मस भूमिका मिलती है। पांचवा, महिलाओं और पुरुषों के स्वभाव में जीवशास्त्र की दृष्टि से जो अंतर होते हैं, उन्हें प्रजातीय अंतर कहा जाता है, जो कि यौन में संबंधित है। समाज द्वारा निर्मित अंतरों को हम लोग लिंग भेद का कार्य क्षेत्र मानते हैं। छवां, नारीवाद का उद्देश्य लिंग भेद की समाप्ति है, न कि यौन भेद की। यह विचारधारा शरीर रचना के भेद को ध्यान में रखते हुए यौन भेद को स्वीकारती है, लेकिन लिंग के आधार पर सामाजिक भेदभाव को समाप्त पर बल देती है। सातवां, लिंग भेद एक सामाजिक समस्या है, जबकि यौन भेद दो प्राकृतिक क्रिया होती है। आठवां, यौन के आधार पर व्यक्तियों का स्त्रियों और पुरुषों में विभाजन सांख्यिकीय आधार पर किया जाता है। स्त्री एक श्रेणी में तो पुरुष दूसरी श्रेणी में आते हैं। सामाजिक संबंधों की दृष्टि से इन श्रेणियों का कोई महत्व नहीं होता, किंतु जब ये श्रेणियाँ सामाजिक स्वरूप धारण कर पुरुष और स्त्री को पृथक पृथक भूमिकाएं प्रदान करती हैं, तभी लिंगभेद की समस्या जन्म लेती है। तीसरा, मुख्य शक्ति सिद्धांतों की नारीवादी आलोचना। नारीवाद ऐसा सिद्धांत है जो स्त्री पुरुष के बीच यौन संबंध असमानता को दमन को एक प्राकृतिक वास्तविकता नहीं बल्कि एक राजनीतिक शक्ति के रूप में परिभाषित करता है। इनकी दृष्टि से पुरुष और स्त्री के बीच का अंतर केवल शारीरिक नहीं बल्कि समाजशास्त्रीय और राजनीतिक भी है। शारीरिक दृष्टि से तो स्त्री और पुरुष भिन्न होते ही हैं, किंतु उन्हें सामाजिक नज़रिए से भी पृथक माना जाता है, समझा और बनाया जाता है। शारीरिक दृष्टि से अधिक सशक्त पुरुष ने अपने आप को सभी बाहरी और सार्वजनिक मामलों का स्वामी मान लिया है और कमजोर नारी को तुच्छ दास और वस्तु समझने लगा है। नारीवाद विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं के रूप में उभरा है। नारीवाद उदारवादी पुरुष और स्त्री के बीच समानता का दावा करते हुए समान वैधानिक और राजनीतिक अधिकारों की मांग करता है, जबकि यह मानवीय नारीवादियों को नारी के शोषण में पूंजीवादी वर्ग विभेद की दुर्गंध आती है और वे दावा करते हैं कि पूंजीवादी समाज के विघटन के बाद ही पुरुषों की भांति नारियों का शोषण भी बंद हो पाएगा। उग्र नारीवाद सदियों से चले आ रहे पितृतंत्र द्वारा महिलाओं को जबरदस्ती गुलाम बनाए रखने का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि शक्ति राजनीति और सार्वजनिक जीवन को पुरुषों का कार्यक्षेत्र माना जाता है, यह गलत है। अतः इन कार्यक्षेत्रों की पुनः व्याख्या कर हर प्रकार के पुरुष प्रधानता के माध्यमों को समाप्त करना आवश्यक है। समाजवादी नारी तत्व मार्क्सवादी और उग्रवादी अवधारणाओं को इकट्ठा कर पुरुष प्रधानता की भर्सना करते हुए जीवन के सभी क्षेत्रों को राजनीतिक माने जाए और पितृतंत्र को केवल इतिहास की पुस्तकों तक सीमित कर दिया जाए। नारीवाद की ललकार। नारीवाद उन सभी व्यवस्थाओं और विचारों को ध्वस्त करने का प्रयास करता है जो पुरुष को श्रेष्ठ सिद्ध करते हैं। उनकी दृष्टि में पितृतंत्र का इतिहास यह है कि पुरुष द्वारा नारी से पारिवारिक सामाजिक और अन्य क्षेत्र में दुर्व्यवहार का इतिहास है। इसलिए नारीवाद उन सब बातों का विरोधी है जिसे पुरुषत्व की गंध आती है। इनकी दृष्टि में प्रतियोगिता और आक्रामकता पुरुष का सहज गुण नहीं है बल्कि इन्हीं गुणों के कारण समाज में कितनी ही समस्याएं पैदा हुई हैं। इसके विपरीत वे नारी तत्व के गुण जैसे शांति प्रियता आत्मसंयम व संभावना की सराहना करते हुए कहते हैं कि इन सहगुणों के माध्यम से समाज की संपूर्ण रचना और चरित्र को एक नई दिशा प्रदान की जा सकती है। नारीवाद की शिकायत जीवन के प्रत्येक पहलू के वर्तमान स्वरूप से है जिसमें राजनीतिक शक्ति भी शामिल है। उसका कहना है कि वर्तमान स्वरूप में राज्य भी पितृतंत्र को अभिव्यक्ति है जिसमें महिलाओं का दमन और सभी औपचारिक संस्थाओं से उन्हें बाहर रखने की लिंगभेदी प्रवृत्तियां बहुत गहरी जमी हुई हैं। नारीवादियों का विचार है कि राज्य और उसकी शक्तियां ना तो सार्वजनिक हैं और ना ही राजनीतिक, इसलिए यह अपने आप में स्वायत्त हैं। इनका विचार है कि ये शक्तियां पारिवारिक और निजी तथा लिंगभेद जैसी गैर राजनीतिक बातों में बहुत बुरी तरह उलझी हुई हैं। इनका मानना है कि नारियों का विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में न संस्थाओं से पृथक होना न केवल अनन्य और दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि यह पृथकीकरण पुरुषों द्वारा जानबूझकर किया गया है जिससे कि पुरुषों का हित पूरा हो। वर्तमान सामाजिक व्यवस्था नारियों के हितों के विरुद्ध है। उग्र नारीवाद तो शक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा और विचार को ही पुरुष के जीवन दर्शन से जुड़ा मानकर नकार देता है और इसी दलील के आधार पर समस्त परंपरागत राजनीति और नौकरशाही की व्यवस्था को अस्वीकार करता है। ब्रायसन का कहना है कि बेहतर होगा यदि वर्तमान संस्थाओं व संगठनों में भाग ही न लिया जाए और अधिक उग्र नारीवाद नारी संस्थाओं द्वारा संगठित होकर अनुशासित रूप से पितृतंत्र को भीतर से चुनौती देने की बात करते हैं। मार्क्सवादियों के विपरीत नारीवाद नारी वर्ग को केवल आर्थिक वर्ग ही नहीं मानते, बल्कि इनका कहना है कि नारी तो स्वयं शक्ति है और यह समाज की समग्र शक्तियां छीनने के योग्य भी है। ब्रायसन ने नारीवाद दलीलों का निचोड़ निम्न प्रकार से दिया है। राजशक्ति अपने आप में कुछ नहीं, बल्कि यह तो सर्वव्यापी पितृतंत्र की शक्ति व्यवस्था ही है, इसलिए यह पक्षपात से परे नहीं है। इसमें पुरुष और नारी समान नहीं समझे जाते, बल्कि इसकी मुख्य विशेषता यही है कि नारी पर पुरुष का वर्चस्व बना रहता है। नारीवाद हर उस सामाजिक संबंध का आलोचक है जिसमें नारी को दबाकर रखने का प्रयास होता हो तथा यौन के आधार पर नारी के प्रति किए वादे सामाजिक व्यक्तिगत या आर्थिक भेदभाव का विरोधी हो। समानता के विचार पर नारीवाद का आघात बहुत पुराना है। वोलस्टोनक्राफ्ट ने रूसो की कड़ी आलोचना की थी क्योंकि वह समानता की बात करते हुए भी महिलाओं को राजनीतिक व्यवस्था से बाहर रखने और उन्हें पुरुषों के खिलवाड़ की वस्तु मानना। अतः सभी आदि मानव जाति को शक्ति के केंद्रों से दूर रखना अनैतिक और अलोकतांत्रिक भी था। जब आदि मानव जाति के लिए सार्वजनिक जीवन पहुँच से बाहर हो और वह निरंतर पीड़ित रहे तो समानता का दावा निरर्थक होगा। नारीवाद महिलाओं को मताधिकार से वंचित रखने वाली लोकतांत्रिक व्यवस्था को गलत मानते हैं, जबकि नारियों को यह मताधिकार मिल गया है। पुरुष उनके उस अधिकार के प्रयोग में तरह तरह के हस्तक्षेप करते हैं। यह हस्तक्षेप भी अधिकारों से नारियों को वंचित रखने का प्रयास है। इतिहास गवाह है कि महिलाओं को शक्ति संरचना में भागीदारी के लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित रखा गया है। यहाँ तक कि बहुलवाद और नव बहुलवाद ने भी महिलाओं को सामाजिक शक्ति के प्रयोग में भागीदारी योग समूह या वर्ग के रूप में स्वीकार नहीं किया है। डहल जैसा बहुलवादी भी पुरुष शब्द की जगह सभी पुरुष और महिलाएं शब्द इस्तेमाल कर संतुष्ट हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि एक बहुत ही जटिल समस्या को बहुत साधारण दृष्टि से देखा जा रहा है। यद्यपि मार्क्स ने वर्ग विभाजन का आधार आर्थिक रखा, किंतु उसने भी महिलाओं को मार्क्सवादियों का यह कहना काफ़ी नहीं है कि जब वर्गहीन समाज बनेगा तो नारी शोषण स्वयं में समाप्त हो जाएगा। इसलिए वे कहते हैं कि पुरुषों की तरह महिलाओं का भी संपत्तिवान वर्गों के हाथ से शोषण होता है। मार्क्सवादी विचार तंत्र में विभिन्न समाजों में महिलाओं के शोषण का ठीक से अध्ययन नहीं हुआ है, बल्कि ऐसा लगता है कि उन्हें तो यह विषय निरर्थक लगता है। मार्क्स ने अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ बनाया, किंतु कामकाजी महिलाओं का संस्था के गठन में कोई दिलचस्पी नहीं ली। यह कहा जा सकता है कि मार्क्सवादियों ने एक वर्ग अथवा शक्ति के रूप में महिलाओं को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया है। लिंग और शक्ति महिलाओं के अधिकारों के लिए दलील। नारीवाद का सीधा सा अर्थ है नारी के अधिकारों की मांग करना। राजनीतिक और कानूनी अधिकार ये सब अब मिल चुके हैं। अवसरों की समानता जिसके लिए संघर्ष अभी जारी है, तथा यौन की दृष्टि से स्वतंत्रता जो कि उसका भविष्य का कार्यक्रम है। नारीवाद आंदोलन का मूल स्रोत इस बात की सामाजिक अनुभूति में है कि महिलाओं को दबा कर रखा गया है और उनके विरुद्ध लिंग के कारण असमानता और भेदभाव का व्यवहार होता रहा है। यह आंदोलन नारी के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने के लिए उपयुक्त विचारों का समुच्चय कहा जा सकता है। इस आंदोलन के स्वरूप में समय समय पर परिवर्तन आता रहा है। शुरू में नारियों के लिए मताधिकार की मांग की गई, फिर उनकी मुक्ति की बात हुई और अब उनकी पूर्ण स्वतंत्रता को नारी मुक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य बनाया गया है। नारीवादी आंदोलन के इतिहास को कई विभिन्न परंपराओं से जोड़ा जाता है। प्राचीन पूर्वी समाजों में नारी को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। मध्यकालीन यूरोप में महिला अधिकारों की रक्षा का बात करने वाली प्रमुख विचारक जीन डी म्यूंग, क्रिस्टीन डी पीसन, मैरी डी गोरेन, अफ्रा बेन तथा मैरी एस्टेल रही। पश्चिमी विश्व में नारीवाद आंदोलन का आरंभ 1790 से 1860 के बीच हुआ। ज्ञानोदय की धारा से प्रभावित नारियों सहित सभी व्यक्तियों के अधिकारों, तर्क, प्राकृतिक नियमों और समान अधिकारों की बात करते थे। फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियों में नारियों के अधिकार से जुड़े विषय उठाए गए। मैरी वोलस्टोनक्राफ्ट ने 1792 में महिलाओं के अधिकार का प्रतिपादन एक नारीवादी दस्तावेज भी प्रस्तुत किया। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और ब्रिटेन में आरंभिक नारीवादी आंदोलनकारियों में एलिजाबेथ केडी स्टेनन, मार्गेट फुलर, ल्यूक्रेशिया मॉट आदि प्रमुख थीं, जिन्होंने महिलाओं के लिए विवाह, शिक्षा और रोजगार आदि के मामले में समान अधिकार की मांग की। 19वीं सदी में नारीवाद इकाईवाद और क्वेकर परंपराओं से जुड़ गया। बुर्जुआ और व्यक्तिवादी नारीवाद के विपरीत 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के आरंभ में समाजवादी नारीवाद का उदय हुआ। 1790 से 1880 के दशकों तक उग्र नारीवाद को पूर्ण प्रेक्षावाद की बात करता है। नारीवाद में तीन ऐतिहासिक धाराएं स्तर स्पष्ट दृष्टिगोचर होती हैं। प्रथम स्तर मताधिकार आंदोलन 1860 से 1930 का था। इसके अंतर्गत महिलाओं ने राजनीतिक दलों और अन्य संगठनों से अलग हटकर नारियों के मताधिकार के लिए आंदोलन किया। इनका कहना था कि महिलाएं अपने अधिकारों के संघर्ष में राजनीतिक दलों और अन्य संगठनों पर भरोसा नहीं कर सकती, उन्हें समानता और न्याय के लिए संघर्ष करना होगा। इसके साथ ही एक दूसरे स्तर का विकास फ्रायड ने किया। उसने मताधिकार पर किए जा रहे जोर को लैंगिकता की ओर मोड़ने का प्रयास किया। उसका यह जानने का इरादा नहीं था कि नारी क्या है, वरन उसका सारा ध्यान इस बात पर केंद्रित था कि नारी किस प्रकार अपने वर्तमान स्वरूप में विकसित हुई, और इसी संदर्भ में वह महिलाओं के दमन से जुड़े हुए सवाल भी उठाता था। नारीवाद का तीसरी धारा 1960 के दशक में छात्रों और अश्वेतों द्वारा चलाए गए आंदोलन की छाया में पनपी। इन्होंने नारी को एक गौण भूमिका में बांधे रखने के विरुद्ध आवाज़ उठाई और नारी मुक्ति की मांग की। साथ ही इन्होंने सभी महिलाओं के बीच भगिनित्व की विचारधारा पर बल दिया। नारीवाद आंदोलन महिलाओं की बिगड़ती हुई दशा के विरुद्ध संघर्ष का दूसरा नाम है। वोल्स्टोनक्राइस्ट ने कहा, महिलाएं हर जगह दुर्दशा भोग रही हैं, उनकी मासूमियत को बनाए रखने के नाम पर सच्चाई उनसे छिपाई जाती है और इससे पहले कि उनका सामर्थ्य विकसित हो उन पर एक कृत्रिम चरित्र ओढ़ दिया जाता है। उन्हें शिक्षा से वंचित रखा जाता है जिससे उनकी बुद्धि का विकास नहीं हो पाता और उन्हें बच्चे पालने तथा घर का काम करने जैसे कामों में जोत दिया जाता है। उनका कार्य क्षेत्र निजी या व्यक्तिगत सीमाओं में बंद कर रह जाता है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने महिला अधिकारों की वकालत करते हुए कहा है कि महिलाओं की गौण स्थिति तो बीते हुए ऐतिहासिक युग की बर्बर संस्कृति का अवशेष है। यह किसी प्राकृतिक कारण से नहीं बल्कि शारीरिक ताकत के आधार पर आरंभ हुई, जिसे परंपरा के नाम पर स्वाभाविक ठहराने का प्रयास किया गया। एंजलस का कथन था कि परिवार में पुरुष बुर्जुआ और पत्नी सर्वहारा है, पुरुष शोषक और नारी शोषित है। रूसो की महिलाओं के दब्बूपन पराश्रित अवस्था कामुक और पुरुषों के आनंद के लिए रचित होने की विचारधारा की बुराई करते हुए वोल्स्टोनक्राइस्ट ने कहा कि नारी केवल कामुकता की वस्तु नहीं रही, वह भी मानव है। धर्म ग्रंथों का हवाला देते हुए वे कहती है कि एक विवेकशील ईश्वर आदि मानव जाति के बुद्धिहीन तो नहीं रचेगा, इसलिए उन्होंने अपनी ओर देखकर ईश्वर का दृष्टि में नारीवाद एक समानता है। यौन संबंधी असमानताओं की भर्त्सना करते हुए मिल इस बात पर जोर देता है कि समाज में वर्तमान संबंधों के स्वरूप को संपूर्ण समानता के सिद्धांत के लिए स्थान खाली करना चाहिए और इस नई व्यवस्था में जहां पुरुष के लिए कोई विशेषाधिकार या शक्ति सुनिश्चित नहीं की जाएगी, वहीं महिलाओं के ऊपर कोई अयोग्यता भी नहीं थोपी जाएगी। मार्क्सवादी नारी की अधीनता को वर्गीय समाज से जोड़ते हैं और उनका विश्वास है कि वर्गहीन समाज में यह अधीनता समाप्त हो जाएगी। यह कहा जा सकता है कि लिंग नारी की अयोग्यता का कारण नहीं और इस नाते वे किसी भी तरह से पुरुषों से निम्न नहीं हो जाती। पुरुष और महिलाओं के मानसिकता में कोई अंतर नहीं है और ना ही पुरुषत्व के कारण पुरुष को ऊंचा सामाजिक दर्जा मिलता है और ना ही नारी नारीत्व को नीचा दर्जा प्रदान करता है। इतिहास नारी जाति के प्रति बहुत ही क्रूर रहा है। पितृतंत्र व्यवस्था के आरंभ से ही पुरुषों से भिन्न लिंग होने के कारण महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्र से परे रखा गया। इसी कारण से सार्वजनिक कार्यों को महिलाओं का नहीं बल्कि पुरुषों का क्षेत्र घोषित किया गया। अन्य चीज़ों की भांति नारी को भी वस्तु माना गया है। अरस्तु उन्हें नागरिकता देने को तैयार नहीं था क्योंकि उसके विचार में उनका काम सिर्फ बच्चे पैदा करना है और पालना था। एक बहुत लंबे समय तक पुरुष ही बाहरी दुनिया का कर्ता धरता रहा। महिलाएं जीवन के हर क्षेत्र में घाटे में रहीं। नारीवादी दलीलों का सार इस बात में निहित है कि स्त्री और पुरुष में भिन्नता एक जीवशास्त्रीय तथ्य है और इस कारण नारी को हीन मानना उचित नहीं। जैसे कि मिल ने कहा था, महिलाओं के विरुद्ध सभी भेदभाव समाप्त कर उन्हें पुरुषों के समान अवसर दिए जाने चाहिए। वह चाहते थे कि सार्वजनिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में
उनके योगदान के साथ साथ शिक्षा रोजगार को भी नारी वर्ग को सुलभ कराए जाने चाहिए। सभी नारीवादी विचारधाराओं के बल पर लिंग के आधार पर भेदभाव समाप्त कर समाज में सच्ची समानता स्थापित करना चाहता है। वस्तुतः नारी को राजनीतिक तथा गैर राजनीतिक अधिकारों और शिक्षा रोजगार मताधिकार आदि के अवसरों से वंचित रखने के पक्ष में कुछ कह पाना उतना ही कठिन है जितना कि राजनीतिक क्षेत्र में उनके मार्ग में बाधाएं खड़ी करना। लेकिन यह भी एक तथ्य है कि परिवार में उनकी विशिष्ट भूमिका को चुनौती देना संभव नहीं। हाल के नारीवादी विचारक भी यह स्वीकार करते हैं कि परिवार में नारी की विशिष्ट जिम्मेदारियां हैं, इसलिए यदि व्यक्तिगत कार्यक्षेत्र में राजनीतिक कार्यक्षेत्र है तो यह भी सुनिश्चित है कि व्यक्तिगत क्षेत्र व्यक्तिगत तो अवश्य ही होगा। लिंग और शक्ति की पितृतंत्रीय अवधारणा नारी के दमन की बात पितृतंत्र अवधारणा से हुई है। यह एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें पुरुषों का पक्ष लेकर महिलाओं की अधीनता को प्राकृतिक और अनिवार्य मानकर प्रचारित किया जाता है। महिलाओं को स्वाभाविक रूप से पीछे धकेल दिया जाता है। सन 1969 का न्यूयॉर्क रेस्टो किंग्स घोषणा पत्र कहता है कि हमारा दमन संपूर्ण है, जो कि हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करता है। हमारा वासना की वस्तु पालन पोषण करने वाली घरेलू नौकर तथा सस्ते मजदूर के रूप में शोषण होता है। हमें वह घटिया जंतु माना जाता है जिसका जन्म ही पुरुष के जीवन को सुखमय बनाना है। हम स्पष्ट कहते हैं कि हमारे शोषक पुरुष ही हैं। यही सही मायने में पुरुष की प्रधानता प्रभुत्व की प्राचीनतम मुख्य आधारभूत व्यवस्था है। पुरुष का प्रभुत्व और नारी की गुलामी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों का ही पुरुष प्रधान पितृतंत्र से संबंध है और जिसके परिणाम स्वरूप नारी का दमन होता है। पितृतंत्र का उद्भव कबीले के मुखिया से जुड़ा है। यह शब्द कबीले के पुरुष सरदार का घोतक है। पितृतंत्र का अर्थ है परिवार के पिता अर्थात सबसे पुरुष का शासन। 16वीं शताब्दी में निरकुंश राजाओं के जमाने में यह शब्द काफी प्रचलित रहा। तब राजा के निरंकुश अधिकार उसी तरह उचित ठहराए जाते थे जैसे कि परिवार के सदस्यों पर उनका शासन। सीलेट का कहना है कि पितृतंत्र का सबसे प्रमुख सिद्धांत है नारी पर पुरुष की प्रधानता। इस तरह से पितृतंत्र नारी पर पुरुष के शासन से जुड़ा है। पुरुष शासक है तो महिला शासित। यौन असमानताओं को लिंग असमानता में परिवर्तित कर दिया जाता है जिससे प्रत्येक लिंग की विशिष्ट भूमिका होती है। अपेक्षाकृत पुरुष का हिस्सा नारी से अधिक तय होता है। शारीरिक दृष्टि से अपेक्षाकृत दुर्बल नारी सामाजिक दृष्टि से हीन मानी जाती है तथा उसे पुरुष की सेविका बना दिया जाता है। इस प्रकार से पुरुष की प्रधानता और नारी के शोषण का आरंभ होता है। पितृतंत्र पुरुष के अस्तित्व का नहीं बल्कि उसकी शक्तियों का परिचायक है। यह नारी पर पुरुषों की शक्ति का घोतक है। मिलेट का कहना है प्रत्येक ज्ञात समाज में लिंग के बीच संबंध शक्ति पर आधारित रहे हैं, इसलिए वे राजनीतिक संबंध हैं। यह शक्ति नारी पर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुष के वर्चस्व का रूप धारण करती है। यह वर्चस्व इतना सर्वव्यापी और संपूर्ण होता है कि प्राकृतिक तथा स्वाभाविक लगने लगता है। नारी पर पुरुष के शासन के रूप में पितृतंत्र न केवल सबसे पुरानी व्यवस्था है, बल्कि यह समाज में बहुत गहरे जड़ जमाए हुए हैं। इसके जीवन मूल्यों को बचपन से ही सामाजिकता के स्तरों के रूप में थोपना आरंभ हो गया। इस प्रक्रिया को शिक्षा, साहित्य तथा धर्म आदि के माध्यम से भी और बल प्रदान किया गया। पुरुष चाहे वह किसी भी उम्र का हो, बालक, युवक, पौर तथा वृद्धावस्था में सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नारी से बेहतर स्थिति पाता है। नारी को जन्म से ही ऐसी सीख दी जाती है जिससे कि वह पुरुष के इस साम्राज्यवाद को ईश्वरीय आदेश मानती है। सिलेट के शब्दों में महिलाओं की ऐसी दशा उन्हें सिलेट के अनुसार आत्मवचना, आत्मखंडन तथा हीनता की स्वीकृति की ओर ले जाती है। पितृतंत्र की दलीलें कुछ इस प्रकार हैं। पुरुष के पास शक्ति है क्योंकि वह पुरुष है, क्योंकि नारी से अधिक समझदार, तर्कशील, साधन संपन्न और ताकतवर है, क्योंकि ईश्वर ने उसे महिलाओं से अधिक योग्यता दी है, क्योंकि महिलाओं के विपरीत उसने इतिहास का नेतृत्व किया है और उसे वस्तुतः बनाया है। सिलेट ठीक ही कहता है, नारी पर पुरुष की पितृतंत्र शक्ति विभिन्न समाजों की कार्यप्रणाली का इसलिए आधार रही है और उसका विस्तार शक्ति की औपचारिक संस्थाओं से काफी आगे तक है। संबंधों का स्वरूप कुछ इस प्रकार बन गया है कि नारी को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पुरुषों पर आश्रित होना पड़ता है और इसी कारण से उसे लगभग दासता का जीवन स्वीकार करना पड़ता है। यौन हिंसा और बलात्कार पितृतंत्र में असामान्य नहीं माने जाते, क्योंकि स्त्री पुरुष के यौन संबंध पुरुष की शक्ति के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। पितृतंत्र समाज पर पुरुष का शासन ही नहीं बल्कि नारी पर पुरुष के शासन की व्यवस्था है। इतिहास को पुरुष द्वारा नारी के साथ अमानवीय व्यवहार का लेखा जोखा मानते हुए मिलेट यह निष्कर्ष निकालता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की हजारों महिलाएं जो कि प्रत्येक वर्ष गैरकानूनी गर्भपात से मारी जाती हैं, उसी व्यवस्था की शिकार हैं जिसके चलते भारतीय महिला को अपने पति की चिता पर बलात् मरना पड़ता है। चीन की महिलाओं को पैर बांधे जाने से अपंग होना पड़ता है और अफ्रीका की लड़कियों के गुप्त अंगों का परिच्छेदन होता है। शक्ति के बहुलवादी सिद्धांत। बहुलवादियों ने शक्ति के विभिन्न सिद्धांत दिए हैं। बहुलवाद की तीन धाराएं स्पष्ट रूप से रही हैं। पहला, लिंडसे लॉस्की, बॉर्कर तथा मैकेबर आदि की रचनाओं का बहुलवाद। दूसरा, द्वितीय महायुद्ध के बाद अमेरिका विद्वानों विशेषकर टूमन तथा देहल आदि के हजारों का विचारों का बहुलवाद। तीसरा, 1970 के बाद पनपा नव बहुलवाद। इसकी झलक मुख्यतः ल्यूएक्स, देहल, लिम्बडम, नीडलिंगर और पॉलिट आदि की रचनाओं में मिलती है। पहली बहुलवादी धारा वस्तुतः निरंकुश राज्य के विरुद्ध प्रतिक्रिया पर आधारित है तथा समाज में विभिन्न संस्थाओं व संघों की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देता है। इसका आग्रह है कि समाज में राज्य से स्वतंत्र अनेक संस्थाएं हैं जो कि महत्वपूर्ण कार्य करती हैं तथा राज्य का काम इन संस्थाओं के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। दूसरी विचारधारा पर यह मानती है कि समाज में अनेक समूह या संघ होते हैं। ये विविध क्षेत्रों में फैले होते हैं और इनके कार्य कुछ सीमा तक एक समान होते हैं। राज्य इन संघों के मध्य केवल मध्यस्थता और निर्णायक का काम करता है। इस व्यवस्था में संघ या समूह के बीच शक्ति का विनिमय और बंटवारा होता है। तीसरा विचार, विभिन्न दबाव गुटों के बीच राजनीतिक शक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा की बात पर बल देते हुए कहता है कि राज्य तो स्वयं में शक्ति का प्रतिरूप है और इन समूहों की प्रतिस्पर्धा के बीच यह अपने आप और सुदृढ़ करने का प्रयास करता है। ये सभी बहुलवादी विचार मूलतः उदारवादी विचारधाराओं की उपधाराएं हैं। बहुलवाद को एक ऐतिहासिक घटनाक्रम के रूप में बताते हुए कैरियल का कहना है, सार्वजनिक जीवन की विधिवत व्याख्या करने के एकमात्र उचित माध्यम के रूप में बहुलवाद पश्चिमी जगत की उदारवादी विचारधारा का हृदय है। तीसरी धारा को नव बहुलवाद भी कहते हैं। इस धारा अपने में पूर्ववर्ती धारा पर आधारित है, जैसे कि दूसरी धारा पहली धारा पर निर्मित है। द्वितीय महायुद्ध से पूर्व का बहुलवाद मुख्यतः ऑस्टिन के निरंकुश राज्य संबंधी विचारों का आलोचक था और उसमें बहुलवाद राज्य संबंधी कोई सिद्धांत नहीं था, किंतु द्वितीय धारा में जिसे हम वास्तविक बहुलवाद भी कहते हैं स्पष्ट राज्य के सिद्धांतों और शक्ति के स्थान पर प्रयोग की विस्तृत व्याख्या है। नव बहुलवाद 1970 के दशक से बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप ढलने का प्रयास करती है। बहुलवाद की मुख्य धारा अमेरिका इतिहास से जुड़ी है और उसी देश से इसका स्वरूप बना और निखरा। वहां पर विकसित हुई शक्ति की परंपरागत और नव बहुलवाद अवधारणा की चर्चा हम कर रहे हैं।